فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله تعالى بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، من ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو، بزرگو اور بھائیو، اللہ جل جلالہ من والہو نے قرآن مجید میں اسباب رحمت بیان فرمائے ہیں. اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک کی 8 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے یہ کہا ہے کہ لعلکم ترحمون، اللہ تمہارے اوپر رحمت برسانا چاہتے ہیں. موجودہ حالات جو امت پر آئے ہوئے ہیں، یہ حالات ہم سب کو بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کی ناراضگی کا نتیجہ ہے. اللہ جل شانہو کے غصے، قہر اور غضب کا مظہر ہیں، اور اللہ کے غضب اور غصے کو دور کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمتوں کو دنیا میں اتارنے کی کوشش کی جائے. وہ اعمال، وہ اسباب، وہ عوامل، وہ سارے راستے اختیار کیے جائیں جن راستوں سے اللہ کی رحمتیں انسانوں پر برستی ہیں. انہی میں سے ایک عمل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت میں بیان فرمایا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، متوجہ رہو، تاکہ اللہ تم پر رحمت برسائے. قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور شعار اسلام ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کے شعائر کا احترام کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، اللہ کے شاعر کی تعظیم اور احترام یہ دل کے تقوی کی بنا پر ہوتا ہے. شعار نشانی کو کہتے ہیں. کچھ نشانیاں وہ ہیں جن کو اسلام کی نشانیاں اسلام کا شعار کہا جاتا ہے. جیسے کعبۃ اللہ یہ شعار اسلام ہے, قرآن مجید یہ شعار اسلام ہے, اذان شعار اسلام ہے, اور رسول اللہ شعار اسلام ہے. شاعر اسلام کی تعظیم اور احترام یہ ایمان کا تقاضا ہے اور اللہ تعالیٰ کے خوف اور اللہ سے ڈر کا نتیجہ ہے. آج جو حالات ہم سب پر پیش آ رہے ہیں, اگر ان حالات پر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ حالات ہمارے اوپر شاعر اسلام کی ناقدری, بے توقیری, بے احترامی کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ حالات آئے ہیں کہ ہم نے اللہ کی نعمتوں اور خاص طور سے اللہ کے شاعر کی بے احترامی کی ہے, بے توقیری کی ہے. کعبۃ اللہ اللہ کا شعار ہے. آپ سب کو اندازہ ہوگا کہ آج سے 15-18 سال پہلے غور کر کے دیکھیں, عام طور سے لوگ عمرے کو نہیں جاتے تھے. بہت سارے لوگ حج کو تو جاتے تھے لیکن عمروں کا عمومی رواج نہیں تھا. بہت کم لوگ اکا دکا عمرے کو جاتے, لیکن گزشتہ 18-20 سال کے لمبے عرصے میں اللہ تعالیٰ کا یہ کرم, اللہ کا یہ احسان, اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہوا, اللہ نے عمرے کے لیے راہیں کھولی, سہولتیں پیدا فرمائیں, آسانیاں پہنچائیں, جس کی وجہ سے بے حساب لوگ ماشاءاللہ عمرے کو جانے لگے. چھوٹے چھوٹے قریے اور دیہات سے 500 لوگ ماشاءاللہ عمرے کو جانے لگے. اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر محلے میں ماشاءاللہ عمرے کو لے جانے والے ٹورس اور ٹریولز کی آفیسیں بے حساب کھل گئیں. اس لیے کہ جانے والے لوگ اتنے زیادہ تھے کہ ان کو لے جانے والے بھی ماشاءاللہ بہت سارے ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی, اللہ نے اپنا ایک فضل فرمایا, ایک سہولت اللہ کی طرف سے ہوئی کہ اللہ نے عمرے کو جانے کی راہیں کھولی. تو ہمیں کیا کرنا تھا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدردانی کرنا تھا. اللہ کے شعار, کعبۃ اللہ کی عظمت اور احترام اور اس کی توقیر اور اس کی قدر دل میں بٹھانا تھا. لیکن ہوا کیا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کی اس نعمت کی قدردانی کے بجائے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی ناقدری ہوئی ہے. کیسے ناقدری ہوئی؟ ہم سب جانتے ہیں کہ عمرے کو جانے والا اپنے گھر میں احرام باندھ کر تیار ہونے سے تصویریں اور فوٹو اور سیلفیاں پکڑنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, اور ہر ہر قدم پر یہاں تک کہ اللہ کے گھر پہنچ کر, کعبۃ اللہ کے پاس پہنچ کر, کعبۃ اللہ کی عظمت اور احترام کی وجہ سے وہاں اس کا خیال کر کر اس کی عظمت اور احترام میں اپنے آپ کو اور اللہ کے گھر کے سامنے جھکانے کے بجائے وہاں پہنچ کر بھی یہی تماشا لگایا ہوا ہے کہ لوگ تصویریں پکڑ رہے ہیں الگ الگ انداز میں, کعبۃ اللہ کے پردے سے چمٹ کر کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہوئے, نماز پڑھتے ہوئے, رکوع کرتے ہوئے, سجدہ کرتے ہوئے, طواف کرتے ہوئے, مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہوئے, عجیب تماشا بنا دیا. اللہ جل شانہ نے دکھایا کہ ہم تمہاری ناقدریوں اور بے توقیریوں پر اگر ہم ناراض ہو جائیں تو تمہارے لیے سارے دروازے بند کر دیں. اللہ نے کعبۃ اللہ کے دروازے بند کر دیے تھے, کعبۃ اللہ میں طواف کے دروازے بند کر دیے تھے, کعبۃ اللہ میں نماز کے دروازے بند کر دیے تھے. یہ سب اللہ تعالی ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ کے شعائر کی عظمت اور توقیر کروں. روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم जो बहुत ही ज्यादा एहतराम और अदब की जगह है, जहां हमारे अकाबिर बरसों रहे। हजरत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी फजाइल आमाल किताब पढ़ी जाती है हर मस्जिद में, हर घर में तकरीबन पढ़ी जाती है, हजरत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह जिंदगी के आखिरी दिन मदीना मुनव्वरा हिजरत करके तशरीफ ले गए, वहीं एक लंबा अरसा रह गए और वहीं आपका इंतकाल हुआ, विसाल हुआ, जन्नतुल बकी में दफन हुए। हजरत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुवाजहा शरीफ, वो सुनहरी जालियां जहां पहुंचकर लोग सलाम पेश करते, एक लंबा अरसा मदीना पाक में रहने के बावजूद कभी 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 भी हिम्मत इस बात की नहीं होती थी कि मुवाजहा शरीफ में सामने जाके सलाम पेश करें, कि रसूलुल्लाह के चेहरे के सामने खड़े होकर सलाम पेश करने की हिम्मत नहीं होती थी। हजरत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं अकदाम आलिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की तरफ खड़े होकर सलाम पेश करता था। आदाब में लिखा हुआ है कि सलाम के पेश करने के बाद दुआ मांगी जाए तो दुआएं कबूल होती हैं, और दुआओं के आदाब में लिखा हुआ है कि सलाम पेश करने के बाद में दुआ करो तो चेहरा किबले की तरफ न करो, बल्कि चेहरा रसूलुल्लाह की तरफ रख कर अल्लाह से दुआ मांगो। और ये ताकीद की गई कि अगर तुम चेहरा किबले की तरफ मोड़ लोगे तो तुम्हारी पुश्त रसूलुल्लाह की तरफ, पीठ रसूलुल्लाह की तरफ हो जाएगी और ये बेअदबी होगी, इसलिए बेहतर ये है रसूलुल्लाह की तरफ चेहरा रख कर दुआ मांगो। ये आदाब सिखाए गए। लेकिन आपने देखा होगा रसूलुल्लाह के रोजे के सामने पहुंचकर लोग बेअदबी के साथ में रसूलुल्लाह की तरफ पीट करके तस्वीरें पकड़ते हैं, कितने अफसोस की बात है। तो बुजुर्गो, अल्लाह ने नेमतें दी, सहूलतें अता फरमाई, तो उन नेमतों की सहूलतों की कदर करने के बजाय नाकदरियां की गई, जिससे अल्लाह ने नाराज होकर मस्जिद के दरवाजे बंद कर दिए, काबतुल्लाह के दरवाजे बंद कर दिए, मस्जिद नबवी के दरवाजे अल्लाह ताला ने बंद कर दिए। ये सब कुछ तौकीर अल्लाह के अजाइम की शाइर की बेतौकीरी की वजह से हुआ है। कुरान भी अल्लाह के शाइर में से एक शियार है और अल्लाह ताला उसका अदब सिखा रहे हैं। फरमाते हैं कि इज़ा कुरी अल कुरान फस्तमियो लहू व अंसितो, कि कुरान जब पढ़ा जाए तो गौर से सुनो और मुतवज्जह रहो। कुरान कहाँ पढ़ा जाए? मस्जिदों में कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो, मुतवज्जह रहो, और घरों में कुरान पढ़ो, घरों में कुरान पढ़ो। कुरान का पढ़ना मुसलमान पर हक है। उलमा ने लिखा है, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक मुसलमान पर साल में दो कुरान खत्म करना कुरान का हक है। जैसे बीवी का हक होता है, बच्चों का हक होता है, माँ बाप का हक होता है, और लोग अगर अपना हक अदा ना करें तो दूसरे उनको याद दिलाते हैं, दूसरे उनको रिमाइंड करते हैं कि आपको ये हक अदा करना है, हक से गफलत नहीं कर सकते हैं। एक आदमी ने निकाह कर लिया, मजलिस में बैठकर, मजलिस निकाह में बैठकर काजी साहब से कबूल करवा लिया, उसने कहा मैंने कबूल किया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अपनी बीवी को अपने साथ लेके नहीं गया, तो लोग उसको कहते हैं आपने कबूल किया है तो बीवी का हक अदा करना है, कबूल करने के बाद बीवी के हक से गफलत लापरवाही नहीं कर सकते। अगर करीब वालों की बात न समझे तो पूरे रिश्तेदार आ जाते हैं, महल्ले के गांव के बड़े लोग आ जाते हैं और आकर याद दिलाते हैं आपने कबूल किया है तो आपको हक अदा करना है। तो ऐसे ही कुरान का भी एक हक है, कुरान का हक कोई याद ही नहीं दिलाता है। एक आदमी की उम्र अगर 60 साल हुई हो, मिसाल के तौर से 60 साल किसी की उम्र हुई, 15 साल बचपन के निकाल दिए जाएं तो 45 साल उसकी मुकल्लफ होने की उम्र, जिसमें अल्लाह के अहकाम उसके ऊपर लाजिम और जरूरी थे, तो 45 साल के दो कुरान का मतलब जिंदगी के 90 कुरान पढ़ना कुरान का हक है। एक आदमी ने गफलत और लापरवाही की वजह से इब्तिदाई उम्र में नमाज छोड़ दी, जब शूर आया, एहसास पैदा होता है तो लोग अपनी नमाजें कजा करते हैं, मसाइल पूछते हैं कि शबे कदर में हम कजा नमाजें पढ़ें, शबे बरात में हम कजा नमाजें पढ़ें, पूछ पूछ कर लोग अदा करते हैं। जैसे नमाज की कजा है वैसे ही कुरान का भी हक है। अगर जिंदगी के 90 कुरान, 60 साल उम्र मिसाल हुई है तो 90 कुरान हमारे ऊपर कुरान का हक है। और हदीस में आता है कुरान पाक जबरदस्त झगड़ालू है, अल्लाह के पास जबरदस्त झगड़ालू है और अल्लाह के पास उसका झगड़ा काबिले कबूल है। मतलब क्या है इस हदीस का? इस हदीस का मतलब यह है, एक आदमी दूसरी नेकियों की वजह से जन्नत में जाने का मुस्तहिक बन जाए, नमाजों की वजह से, रोजों की वजह से, सदका खैरात की वजह से, हज उम्रे की वजह से, दीन की खिदमत की वजह से, दीन की मेहनत की वजह से, ये दीन के दूसरे आमाल की वजह से, अगर वो जन्नत में जाने का मुस्तहिक बन गया और उसको जन्नत में जाने की सर्टिफिकेट मिल गई और वो जन्नत की तरफ जा रहा है, और उसने अगर कुरान का हक नहीं अदा किया हो तो रास्ते में कुरान आके खड़ा हो जाएगा, कुरान उसको पकड़कर वापस अल्लाह के सामने लाके खड़ा करेगा और खड़ा करके कहेगा परवरदिगार इसने मेरा हक नहीं अदा किया, ये जन्नत में कैसे जा सकता है। और अल्लाह के पास कुरान का झगड़ा मंजूर है, मकबूल है, और अल्लाह उसको कुरान के झगड़े के पूरा किए बगैर उसे आगे जाने नहीं देंगे। इसलिए बुजुर्गों, कुरान पढ़ना एक मुसलमान पर हक है। पहले अल्लाह का करम था, मुसलमान घरों से सुबह के वक्त पर कुरान की तिलावत की आवाजें आती थी, हल्की आवाज में कुरान पढ़ना है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ऊंची आवाज में कुरान पढ़ते थे और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु बहुत ही हल्की आवाज में कुरान पढ़ते। रसूलुल्लाह के पास में ये मामला पेश हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया और कुरान पाक की आयात भी उतरी, फरमाया कि न बहुत ऊंची न बहुत हल्की, दरमियाना आवाज में, जिस आवाज को खुद मुसलमान पढ़ने वाला खुद अपने कानों से सुने और उसके कान के रास्ते से वह आवाज उस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन लैसा फी जौफिही शैउन मिनल कुरान, जिसके सीने में कुरान का कोई हिस्सा नहीं, कल बैतिल खरीब, वो खंडर है। जैसे आपने देखे होंगे किसी जमाने के महलात आज खंडरात बन चुके हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिस सीने में कुरान नहीं वो सीना खंडर है, वो वैराना है, वो बर्बादी है। तो इसलिए कुरान पढ़ना और घरों में कुरान पढ़ना और कुरान आवाज से पढ़ना, और जब घरों में कुरान पढ़ा जाए तो अल्लाह के रसूल अल्लाह जल्ल शानहू कुरान का अदब सिखाते हैं और फरमाते हैं कि कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो और मुतवज्जह रहो। और ये सुनना और मुतवज्जह रहना और कुरान का पढ़ना लअल्लकुम तुरहमून, तुम्हारे ऊपर अल्लाह की रहमतें बरसेंगी। ये शाइर इस्लाम में से है, कुरान का एक अदब है, अल्लाह ने इस्लाम के शायर के आदाब सुनाए सिखाए हैं। शायर इस्लाम में से एक बहुत बड़ा शियार अजान भी है। आज से चंद साल पहले आप सब जरा सोच कर देखें, आपको अंदाजा होगा कि चंद साल पहले तक जब तक ये स्मार्टफोन नहीं आया था और स्मार्टफोन आने के बाद से हमारी आदतों में बहुत जबरदस्त तब्दीली आई है। और सबसे बड़ी तब्दीली हमारे अंदर जो आई है वो मगन हो जाने की है, इन्हीमाक की है। ये जब मोबाइल खुलता है तो हम उसमें मगन हो जाते हैं, मुनहमिक हो जाते हैं, डूब जाते हैं, आसपास का हमें कुछ पता नहीं चलता है। ये मगन हो जाने, मुनहमिक हो जाने की जो आदत हमें पड़ी है ये स्मार्टफोन के आने के बाद पड़ी है। उससे पहले आम तौर से जब भी अजान होती, आपने देखा होगा आम मुसलमान वो जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों के अंदर है, लेकिन जिस शोबे में होता था अजान की आवाज के साथ वो अजान की तरफ मुतवज्जे हो जाता, एक कारपेंटर वो काम करते करते अजान की आवाज सुनता, थोड़ी देर के लिए काम रोक देता। एक मैकेनिक वो अजान की आवाज सुनता, वो थोड़ी देर के लिए अपना काम रोक देता। सर पर टोपी है तो बहुत खुशी की बात, और अगर सर पर टोपी न हो तो आप में से बहुत सारों ने देखा होगा कि मुसलमान अपने सर पर थोड़ी देर के लिए अजान के एहतराम में हाथ रख लेता था। घरों की औरतें अजान के शुरू होने के साथ अपने सर का पल्लो दुरुस्त कर लेती थी, और घर के भी काम थोड़ी देर के लिए गोया रुक जाते थे। लेकिन अब अल्लाह माफ फरमाए कि अब पता ही नहीं चलता है कब अजान शुरू होती है, कब अजान खत्म होती है। हारून रशीद बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं, इतने दो तिहाई दुनिया पर उनकी हुकूमत चलती थी, 2/3 of the world, दो तिहाई दुनिया पर उनकी हुकूमत थी। किताबों में आता है कभी कभी वो अपने बाला खाने पर, बालकोनी पर खड़े खड़े बादलों को गुजरता हुआ देखते, तो गुजरते हुए बादल को देख कर कहते, अम तेरी है सुशेती फैन खराज कियाती लैया, कहते जा जा चाहे जहां जाके बरस जा, तेरे बरसने से जो अनाज निकलेगा उस अनाज का कुछ हिस्सा मेरे खजाने को बतौर टैक्स के आएगा, इसलिए चाहे जहां जाके बरस जा। इतनी बड़ी सल्तनत और हुकूमत थी। उनकी बीवी थी जुबैदा। जुबैदा को पता चला कि मक्कतुल मुकर्रमा में मीठे पानी का इंतजाम नहीं है। जुबैदा से लोगों ने गुजारिश की तो जुबैदा मलिका ने फैसला किया कि मुझे एक नहर बनाना है, बहुत दूर मैलों दूर से मीठा पानी चैनल बनाकर मक्कतुल मुकर्रमा को उन्होंने पहुंचाया। बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी दौलत खर्च हुई, आज के जमाने में हजारों करोड़ रुपए उस पर खर्च हो गए। उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद किसी ने उनको ख्वाब में देखा। ख्वाब में देखने वाले को अंदाजा था कि जुबैदा ने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, नहरे जुबैदा उसने बनाई है, मक्के में आने वाले हज और उमरा वालों के लिए और आम मक्के के बाशिंदों के लिए उसने पानी का इंतजाम किया है, बहुत बड़ी खिदमत है, ये खिदमत अल्लाह के पास बड़ी वजन रखती होगी, इस पर अल्लाह इसकी बख्शिश कर देंगे, ये उसके जहन में था। उसने जुबैदा को ख्वाब में देखा तो ख्वाब में देखते ही उसने पूछा कि जुबैदा, नहरे जुबैदा की बरकत से अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया होगा। जुबैदा ने जवाब में कहा कि मेरी ये नहर अल्लाह के सामने पेश हुई, अल्लाह ताला ने मुझसे कहा, जुबैदा हमने तुम्हें दौलत दी थी तो खर्च किया ना, हम अगर दौलत न देते तो कहां से खर्च करती, हमारा दिया हुआ पैसा तुमने खर्च किया तो कौन सा कमाल कर दिया, कौन सा कारनामा तुमने अंजाम दिया, ये कोई बड़ा कमाल नहीं है। जुबैदा कहती है, ये सुनते ही जी मेरी घबराहट बढ़ गई, पैरों तले जमीन निकल गई, ये अमल ही कबूल नहीं है तो फिर कौन सा अमल अल्लाह के पास कबूल होगा। इसी घबराहट में थी कि अल्लाह ताला ने मुझसे कहा कि जुबैदा तुम्हारा एक अमल हमारे पास है और हम तुम्हारी उस अमल की बरकत से हम तुम्हारी बख्शिश करते हैं। और वो अमल ये है, एक दफा तुम खाना खाने के लिए बैठी थी, निवाला उठाया मुंह के करीब तक लेके चली गई थी, इतने में अजान शुरू हुई, और जैसे ही अजान की आवाज लगी और अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होने लगी तो तुमने महसूस किया कि तुम्हारे सर का पल्लो हटा हुआ है, तो तुमने निवाला मुंह में रखने के बजाय, जो निवाला मुंह के करीब तक चला गया था उस निवाले को मुंह में रखने के बजाय पहले तुमने निवाला बर्तन में रखा और फिर अपना सर का पल्लो दुरुस्त किया, सर का पल्लो दुरुस्त कर फिर तुमने निवाला उठा के मुंह में रखा, तो ये अजान का एहतराम था और इस अजान के एहतराम की बरकत से हमने तुम्हारी बख्शिश और मगफिरत कर दी। तो बुजुर्गों हम अंदाजा करें, आज शायर इस्लाम हमारी जिंदगी से उसकी अजमत निकल चुकी है, उसका एहतराम निकल चुका है। काबतुल्लाह की बेतौकीरी, रसूलुल्लाह के दरबार में पहुंचकर वहां की बेअदबियां, अजान की बेअदबियां, और उन सब का नतीजा हमने खुद अपनी आंखों से देख लिया। मस्जिदें बंद हो गई, मस्जिद की तरफ मुसल्ली नमाज के लिए बढ़ता तो हमने खुद अपनी आंखों से देखा था कि नमाजी को मस्जिद की तरफ आता हुआ देखकर मस्जिद के खादिम दरवाजा बंद कर देते थे कि कहीं वो मस्जिद के अंदर ना आ जाए। ये हाल हमने अपना देखा है। ये सब नाकदरियों, बेअज़मतियों, बेतौकीरियों की वजह से है। तो कुरान अल्लाह जल्ल शानहु कुरान की आयत आयत में फरमाते हैं कि कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो, मुतवज्जह रहो, अल्लाह तुम पर रहम फरमाएंगे, अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहमतें बरसाएंगे। अल्लाह से दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह के शाइर की अजमत करने की और उनका एहतराम करने की और उनके